नहीं होगा, राशिक और तामसिक वालों, सात्विक को कुछ कुछ, और निर्गुण जो अधिकारी हैं उन लोगों को सुनने मात्र से ही वैसे हो। जैसे परीक्षित महाराज जी को सुना रहे हैं और वो कह रहे हैं दोनों को आनंद हो रहा है। इसके बाद में कथा कहना आरंभ किया। कल हमने बतलाया श्रोता और वक्ता, वक्ता और श्रोता दोनों को समजातीय होना चाहिए। समजातीय नहीं होने से वो आस्वादन नहीं कर सकते, न वक्ता का होगा और न श्रोता का होगा। अब ये कथा आरंभ कर रहे हैं। भूमि दीप्त नृपव्याज दैत्यानीक सतायुतई आक्रांता भूरी भारेण ब्रह्मानं शरणं जय गोर्भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना रुदंती करुणं विभो उपस्थिता अंतिके तस्मै व्यसनं सम वोचत। उन्होंने प्रश्न किया था पहले कृष्ण की लीला कथाओं को आप वर्णन कीजिए। किस प्रकार से कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, किस प्रकार से गोकुल में आए, वहाँ पर क्या क्या लीलाएं की, ये सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में इन्होंने आरंभ किया। साधारण अर्थ ये भूमि दृप्त नृप व्याज दत्यानीक सताजुतई, पृथ्वी देवी दृप्त अभिमानी राजाओं के ब्याज से उत्पन्न हुए लाखों लाखों दैत्यों की सेना को लेकर पृथ्वी पर भार बढ़ा रहे हैं। अर्थात दैत्य, दैत्यगण जो रामचंद्र जी की लीला में या और भगवान के अवतारों के द्वारा या पहले जो मारे गए हैं वो दैत्य थे, वो अब इस समय में राजाओं के रूप में प्रकट हुए हैं। बड़े धनी मानी, बड़े सुंदर सुकांत पराक्रमी, किंतु असुर हैं। असुर किसको कहते हैं? असुर कहते हैं जो लोग कभी भगवान के उन्मुख नहीं होते, भगवत भक्ति नहीं करते, और भगवान का जो भक्त भक्ति करते हैं उनको देवता कहा गया। दौ भूते स्वर्गे लोकेस्मिन दैव आसुरे वच विष्णु भक्तो भवेत दैव आसुर तद्विपर्य। जो भगवान का भजन करते हैं वो देवता हैं, वो साधु हैं, और असुर इसके ठीक विपरीत होते हैं। तो वो लोग जैसे कालनेमि इत्यादि हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष के पुत्र थे, कालनेमि को भगवान ने चक्र से मारा था, वो आज हो गया है कंस, वैसे ही सब जितने असुर थे वो लोग सब यहाँ पर राजा के रूप में और प्रकट हुए हैं। इसके द्वारा भूरी भार ब्रह्मानं शरणं जउ, पृथ्वी उस भार को सहन नहीं कर सकी और वो ब्रह्मा के पास में गई। गोर भूत्वा गौ का रूप धारण किया, अश्रुमुखी आँखों से आंसू गिर रहे हैं, खिन्ना अत्यंत दुखित, क्रंदंती रोदन करती हुई, करुणम करुणापूर्वक गई विभो ब्रह्मा जी के पास में उपस्थित हुई। और तस्मै व्यसनम अपने जो दुख है दुखड़ा ब्रह्मा जी के पास में जाकर व्यसनम मने दुख उसका स्वम अबोचत, अपना दुखड़ा अबोचत मने कहने लगी, रोने लगी, अपने दुखों को प्रकाश करने लगी। अब टीकाओं के आधार पर कुछ इसकी व्याख्या की जा रही, ऐसे ये चीजें समझ में नहीं आई, खूब सावधानी से सुनना और समझना। कोई चीज को बतलाने के लिए समय, देश, काल, पात्र इत्यादि को जान लेना उचित। इसमें इतना यदि विस्तार पूर्वक कहा जाता तो हजार महाभारत बन जाते, इसलिए सूत्र रूप में कहा गया है, टीकाकरण ने उसको ही प्रकाशित किया है। जिस समय में पृथ्वी जी दुखी हो रही हैं दैत्यों के भार से, उसमें की स्थिति क्या है, कैसा वातावरण था, इस पर वो विचार कर रहे हैं। उसमें जगत की स्थिति बड़ी शोचनीय थी। उस समय में जो लोग पृथ्वी को पालन करने वाले हैं, इसके लिए कोई प्रयत्न किया कि नहीं, जैसे 10 दिग्पाल होते हैं, 10 दिग्पाल लोग, इसके बाद में शंकर जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र इत्यादि, तो ये 10 दिग्पाल में ही हैं। इसके बाद में इसकी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, इसका संहार करने वाले रुद्र जी, इन दोनों के ऊपर वाले गर्भोदशाई, इनके ऊपर वाले गर्भोदशाई, इसके ऊपर वाले कर्णादशाई, इसके ऊपर वाले सदाशिव जी, इसके बाद में नारायण जी, और नारायण भी जिनके अंश हैं वो वासुदेव, और उस वासुदेव के भी मूल अंशी कृष्ण हैं। इन लोगों ने क्या किया उसको बचाने के लिए, पृथ्वी का भार हटाने के लिए, उस समय इनका क्या कर्तव्य होता है। गीता में बतलाया है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम अधर्मस्य ने जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म की उन्नति होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब मैं अपने को प्रकटित करता हूँ इस भूलोक में, ब्रह्मांड में। परित्रणाय साधुनां, साधुओं की परित्राण के लिए, च दुष्कृतां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृतिकारी व्यक्तियों को विनाश करने के लिए, और फिर धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं युग युग में आता हूँ। अब कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि, धर्म की ग्लानि होती है, क्या तात्पर्य, धर्म के मूल कर्ता भगवान हैं, धर्म के मूल हैं, उन्होंने वेद शास्त्रों में, पुराणों में, शास्त्रों में, भागवत इत्यादि में, गीता में धर्म का तत्व बतलाया, और उसके अनुसार में मनुष्यों को चलने के लिए विधियां बनाई, बीच बीच में वो स्वयं प्रकट होते हैं, बीच बीच में अपने शक्तियों को आचार्य के रूप में जगत में प्रेरित करते हैं। अब वो वेद जो धर्म कहते हैं, वो धर्म क्या, वो धर्म किसको कहते हैं, एक लौकिक धर्म और एक परमार्थिक धर्म। लौकिक धर्म क्या, अभी जो हम हैं संसार की गति अच्छी तरह से चल सके, कोई अधिक गड़बड़ी न हो, इसके लिए बाहरी धर्म एक है, इसी को लौकिक धर्म कहते हैं, जिसमें सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, दूसरों को अपने लिए तंग नहीं करना, मर्यादा में रहना इत्यादि सब बातें हैं। जिन जिन से जगत का उपकार होता है उनको आदर करना, जैसे गाय दूध देती है माँ के समान, तो गाय का पालन करना, वृक्षों से फल मिलता है, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, इनका पालन पोषण करना, जिन लोगों के द्वारा इस जगत की रक्षा होती है ऐसे महापुरुष लोग, इन लोगों को रक्षा करना, इनका पालन पोषण करना, ये एक जागतिक है। और एक है जीव मात्र ही, प्राणी मात्र ही भगवान का नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो इस जगत में आकर के भूल जाता है उसको, जब भूल जाता है तो अपने गुरु परंपरा से, ऋषि महर्षियों के बतलाए हुए पद से, वैदिक धर्म को छोड़ करके, और वो मनमानी इन सब शास्त्रों का अर्थ करता है और उसी पर चलता है, ने? गीता का अर्थ उल्टा करेगा, भागवत का अर्थ उल्टा करेगा, वेदों का अर्थ उल्टा करेगा, और करके मनमाने विचारों को से वो चलने की चेष्टा करता है, ये हुई धर्म की हानि, ग्लानि ये चीज है। धर्म है धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त, जब जब किसी समय में धर्म ये बतलाया गया, भगवान की भक्ति ही यथार्थ धर्म है, जब जब ये धर्म की ग्लानि होती है, असुर लोग बढ़ जाते हैं और इन चीजों को नहीं मानते हैं, तब धर्म की ग्लानि होती है, उस समय जगत जीव वेद पुराण आदि ये शास्त्रों के आदेशों की कोई परवाह नहीं करता, मनमाने ढंग से चलता है। आजकल लोग, हम समझते हैं कि एक कोठी में एक लोग धर्म लेकर के चलते हैं, बाकी सब वेद ही नहीं जानते, वेद को कहते हैं बेकार की माइथोलॉजी है, कहानियां हैं, गल्प हैं। मैक्स मूलर जैसे व्यक्ति ने, हमारे भारत के जितने आजकल लोग हैं वेद शास्त्रों के अनुसार में नहीं चलते, वो सब पुरानी चीजें हो गई, इसकी कोई जरूरत नहीं, मनमाने रूप में धर्म को बतलाते हैं, उनकी अपेक्षा अपने मनोमत जो आचरण है उसी को धर्म मानते हैं। आजकल ऐसा चला है एक भाव, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्य इत्यादियों ने बहुत दिनों तक राज्य शासन किया, अब इनको किसी प्रकार से मिटा करके अब हम शूद्र जो हैं, जो नीच जाति समझे वाले, अब हम पृथ्वी का शासन, उन लोगों ने बहुत अत्याचार किया, ऐसी एक धारणा बन गई है लोगों की, बहुत माने अपमानजनक शब्दों में वो लोग आजकल इन लोगों को हटाने की चेष्टा कर रहे हैं। धर्म को एक क्या ढकोसला ये मानते हैं, विग्रह इत्यादि की तो बात क्या, माता पिता की सेवा को भी ढकोसला मानते हैं, इसीलिए तरह तरह के विचार जगत में उठ रहे हैं। जो लोग पूर्व आचार्यों का विचार लेकर के चलने की चेष्टा करते हैं, सच बोलो, झूठ मत करो, दूसरों के साथ में भलाई करो, दूसरे की निंदा मत करो, जीव मात्र पर दया करो, किसी प्राणी की हत्या मत करो, गंदी चीजें मत खाओ इत्यादि कहते हैं, ये लोग हमारे पूर्व आचार्यों की जो बातों में विश्वास करके जो चल रहे, जैसे हम लोग चल रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं,
वो आजकल आदर उनको नहीं मिलेगा। आजकल वही भंड लोग ही साधु संतों को इस पर जो चलते हैं उसको भंड कहेंगे, बदमाश कहेंगे, ढकोसला बनाएंगे, उनको अपमानित करते हैं जो सत्य पर चलते हैं, और उनका तिरस्कार करते हैं ये लोग। इनके धर्म को जो भगवान का नाम करना है इसको कहेंगे ढकोसला, बेकार का। आजकल जो अफसर लोग सत्यवादी होंगे, घूस नहीं लेते हैं, और जिनका आचरण शुद्ध है उनको एक दिन भी टिकने नहीं देंगे, कोई भी बड़ा उसको निकाल करके बाहर कर। वो लोग अपने विचारों को ही परम धर्म कहते, वो कहेंगे जो जीव मात्र की सेवा करना चाहिए, मनुष्यों की सेवा, हम लोग मानव धर्म, वृंदावन में जाएंगे आपको मानव धर्म मिलेगा, मानव धर्म संस्थान ना क्या, सर्वत्र ऐसे सब चल रहे। मानव धर्म माने क्या, मनुष्य लोग पशु पक्षी कीट पतंग सबको मार करके खा जाएं और मनुष्य को बचाया जाए केवल मनुष्य के लिए ही, ये मनुष्य मानव धर्म है। मोर को काट कर खा जाए, गाय को खा जाए और मनुष्यों को खिलाए, यहां तक कि ऐसा भी नहीं करते, मनुष्यों में भी भेद करते हैं, ये भारतवासी हैं, ये मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, हिंदू हैं तो मुसलमानों के लिए विधर्मी है, मनुष्य मात्र की भी सेवा नहीं करते, जितना उत्पात यही सब करते हैं, तो भी अपने कहते धर्म का डंडा लेकर के खड़े। कलयुग में करी करीब ऐसा ही होता है, और धार्मिक लोग ही अपने को धार्मिक मान लिया। इसी का नाम धर्म का ग्लानी है, धर्म छिप जाता है अधर्म के तरफ में लोग बढ़। कल तरह तरह की संस्थाएं चल रही हैं, मैंने संस्थाएं क्या चलती हैं, धन उनके नाम पर इकट्ठा करके अपना भोग करते हैं और कुछ नहीं। आजकल सनातन धर्म के नियमों को कोई आदर नहीं दे करके, आजकल कुछ संस्था है जो लंगड़ों को ये देती है, कल्याणम करोति, कल्याणम करोति माने क्या, किस चीज का कल्याणम करो, आत्मा का कल्याण, न मनुष्य मात्र का, न पशु पक्षी कीट पतंग प्राणी मात्र का कल्याण, और वो कैसे होगा। कल्याणम करोति से भी और अधिक बंगाल में कुछ सन्यासी हैं, वो लोग क्या करते हैं, गरीबों की सेवा करो, ठाकुर मंदिरों में ठाकुर की और जो विद्वान है उनका मत, वो रास्ते में बैठा देंगे और उनको खिचड़ी खिलाएंगे, वो भी पतली बेकार की, और हजारों लाख रुपए ऐंठ करके ले आएंगे, अस्पताल नाम करके खोलेंगे, किसी की बिना पैसे सेवा नहीं होगी, गरीब लोग तो ऐसे ही मरेंगे। कोई गरीब आदमी जाया कहे जैसे अभी 500 रुपया ले आओ अभी तब एडमिशन करो, खुद वो गाय का मांस भी खाते हैं, मछली खाते हैं, कोई सदाचार नहीं, गीता भागवत पढ़ना पाप समझते हैं, यही सब विचार जब बढ़ जाता है ये धर्म की ग्लानी और अधर्म की ये बढ़ती है। आजकल प्राय यही सब चलता है। हे अर्जुन, जब इस प्रकार से धर्म की ग्लानी और अधर्म का अभ्युत्थान होता है उस समय मैं आत्म प्रकाश करता हूँ। कौन कहता है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। उस समय मैं अपनी जोग माया के आश्रय में रह करके और मैं अपना आत्म प्रकाश करता हूँ। उस समय प्रकृत धर्मनिष्ठ साधुओं का मैं परित्राण करता हूँ और धर्मध्वजी स्वेच्छाचारी पाषंडों का विनाश करता हूँ। कोई कहते साधुओं की रक्षा की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, उनको कोई दुख है नहीं, ऐसा मत सोचो, वो तो उत्तम भागवतों के लिए है। किंतु जो निम्न कोटि के जो वैष्णव हैं, कनिष्ठ से आरंभ करके मध्यम इत्यादि, उनको जगत के लोग कष्ट देते हैं नहीं। हमारे यदि भगवान का चक्र नहीं होता तो अम्बरीश की क्या अवस्था होती, तो अम्बरीश की रक्षा नहीं की, उनकी रक्षा की, और यदि नहीं रक्षा करते तो धीरे धीरे सनातन धर्म उड़ जाता। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, जरासंध, कंस, ये सब मिलकर के पांडवों को परेशान कर रहे थे। ऊपर से उनकी मदद में कोई भी नहीं आ रहा था, डरते थे ये लोग सब हमको तंग करें। एक साधु की रक्षा करना है, बंबई हम लोग गए थे, देखा कुछ दुष्ट लोग एक आदमी को मार रहे, अकारण, हम लोग कार से आ रहे, देखा बीच भरे शहर में वो एक आदमी को मार रहे थे। एक अच्छे आदमी, भद्र आदमी आए, सज्जन आदमी, काजी भाई क्यों मारते हैं उनको, जब रक्षा करने गए, जब काजी भाई ऐसा मत करो, ऐसा रोका, बस सब उसको छोड़ करके इसी पर टूट पड़े और उसे मार करके गिरा दिया बेचारे को। हम लोग भी कुछ कर सकते थे, भाई ऐसा मत करो, हम लोग भी काजी भाई कार लेकर के बढ़ाओ आगे, डर तुम्हारे, हम लोग भी नहीं कुछ किया। और भी बहुत से सज्जन, हजारों आदमी आ जा रहे थे, उनके हाथ में पिस्तौल, डंडा, लोहा, गोली, सब चाह रहे हैं जिससे रक्षा हो, किंतु रक्षा नहीं। इसी तरह से जिसमें महाभारत युद्ध हुआ उसके पहले अच्छे सज्जन आदमी भी थे, किंतु पांडवों की तरफ से कोई खड़ा होने वाला नहीं था। बीच सभा में जहाँ पर गुरुजन बैठे हैं, उनकी पत्नी को नंगा किया जाए और बेईमानी से उनका सब हरण कर लिया जाए, किंतु कोई भी शब्द करने लायक नहीं, यह अधर्म की हानि। तो उस समय कृष्ण क्या करते हैं, तदात्मानम सिजम्यहम्, उस समय में कृष्ण जगत में आते, ये तात्पर्य है। इसलिए ऐसा मत सोचो जब भक्तों को कोई जरूरत नहीं है प्रहलाद महाराज जी जैसा, सभी प्रहलाद महाराज जी नहीं है। यदि हम लोगों की रक्षा नहीं हो ना, हम लोग ऐसे नहीं है जैसे जो कोई विष देगा तो हम मरेंगे नहीं। अभी सब मथुरा के लोग मिल करके या 10-20 गुंडे आ करके कहेंगे नहीं भागो भागो यहाँ से, कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस समय क्या होगा, क्या होगा, उस समय भगवान अपने भक्तों को दे करके, प्रेरणा दे करके, जैसे तैसे रक्षा नहीं करेंगे हम, एक मिनट भजन नहीं कर सकते। इसलिए दोनों काम है, अपने भक्तों का विनोदन करने के लिए भी, उनके विरह दुख को हटाने के लिए भी, और साथ साथ में ये भी काम कर। ऐसे ही लोग अधिक हैं, भगवान के विरह में तड़पने वाले कितने लोग हैं, बहुत इने गिने हैं। बंगाल में भजन कर लेना सहज नहीं है, अब तो कुछ थोड़ा सा कम हुआ, नहीं तो पहले, आज से 5-7 वर्ष पहले, 2-4 वर्ष पहले हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को एक लड़की जा रही थी, एक महिला, कहते हैं ये देखो ये भंड है, भंड है, बदमाश है, कपटी, धूर्त है, बदमाश है। मैं कुछ कहने जा रहा था तब तो विक्रम महाराज ने कहा जैसे मत बोलिए, नहीं तो फिर और सब लोगों को चिल्ला करके सबको बुला लेगी और सभी उसी का पक्ष लेकर के हम लोगों को तंग करेगी। अभी कुछ दिनों के बाद में ऐसी ही स्थिति आएगी, इसलिए भजन करके चले जाने की जरूरत है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने चक्र को आदेश दे रखा है, वो अपने परिकरों को आदेश रहे पृथ्वी में घूमते रहो, और यदि ऐसी विपत्तियां आए तो तुम लोग जाकर के उनकी रक्षा करो, इसीलिए चक्र भी घूमते हैं। ऐसे भक्तों पर अनीति, दुर्नीति, अत्याचार होता है तो वो, इसलिए डरने की भी कोई जरूरत नहीं, जरूर वो रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान को आने की जरूरत। साधारण आदमी एक नहीं काम कर सकता। इस जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों जगत को ठीक रखते हैं, किंतु कभी कभी हो जाता है इनके बस की बात नहीं होती, तो उस समय में गर्भोदशाई अवतीर्ण होते हैं। जब उनके भी बस की बात नहीं होती तो कर्णाधिशायी विष्णु आते हैं, जब उनके भी बस की बात नहीं होती तो नारायण या नारायण के अंश जितने हैं ये सब लोग आते हैं। किंतु हो सकता है कि उनके भी बस में बात न हो, तो फिर क्या होगा?
नृसिंह रामचंद्र
कृष्ण स्वयं आते और एक साथ में सब काम करते हैं। ये सारी जगत में बातें, इसके अतिरिक्त भी बातें हैं। धर्म आत्मधर्म की ग्लानि इत्यादि को दूर करते हैं, भक्तों के विरह को भी दूर करने वाले होते हैं, वो प्रेम भी देने वाले हैं, सभी काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बतला रहे हैं। द्वापर युग का शेष है, द्वापर युग शेष हो एकदम समाप्त होने को आया है, कुछ दिन बाकी हैं। उस समय की स्थिति कैसी थी? उस समय में दुर्योधन इत्यादि जन्मे थे, उसी समय जरासंध भी था, कालजवन था, पौंडरिक वासुदेव, कर्ण, दुशासन इत्यादि से थे, धृतराष्ट्र इत्यादि थे, और भी बड़े बड़े राजन्य वर्ग थे। वो लोग क्या करते थे, देखते देखते ही दूसरों का राष्ट्र पर चढ़ाई करके लूट लेते थे। कब किस पर आक्रमण होगा कोई ठीक नहीं था, कब किसकी लड़की को स्त्री को हरण करके ले जाएगा, कौन ले जाएगा, कोई भी ठीक नहीं था उस समय। चारों तरफ में इसी प्रकार से लगी हुई परपीड़न। देखो पांडव लोग दुखी होकर के पावन काम्य वन में विमला कुंड के ऊपर में बैठे, वहाँ पर रह रहे थे, इसी प्रकार से जीवन यापन कर 12 वर्ष का वनवास था, अपना सब कुछ हार गए। जयद्रथ उस रास्ते से जा रहा था, द्रौपदी पानी भरने के लिए जा रही थी, ये लोग भिक्षाटन के लिए या कुछ फल फूल लाने के लिए इधर गए, अकेले पानी भरने के लिए विमल कुंड में जा रहे। और उसको देखा और देख करके देखा, अरे वो तो हमारी शाली है, शाली शाली तो दुर्योधन की बहन की दुशीला का वो पति था। तो दुर्योधन क्या हुआ, उसका शाला, तो अर्जुन पांचों पांडव भी उनके शाला हुए, तो वो शाली हुई। अब चिंता है, पहचानता है, वो भी पहचानता है, ये भी पहचानती हैं, क्या मेरे भूल हुई क्या, क्या मैंने क्या कहा, क्या होगा,
साला का कौन शाली होती है, साला का कौन शाली होता है,
अच्छा होती है, जैसे संबंध है। अब वो पहचानता है, ये भी पहचानती है, बातचीत करने लगा मन में कुबासना, बातचीत करते करते कहा, जैसे तीन पांडवों के साथ में क्यों इसलिए है, चलो मैं तुम्हें राज रानी बनाऊंगा, इन भिखारियों के साथ में रहने की क्या जरूरत। तो देखा जी इसका मनोभाव खराब है, तो वो कड़ी हो गई, इतने में वो जबरदस्ती उनको पकड़ लिया और लेकर के अपने रथ में बैठा दिया। अब ये चिकती चिल्लाती हुई जा रही, पांडवों ने सुना, किसी ने जाकर के कह दिया जी ऐसा ऐसा हुआ, बस अर्जुन और भीम रथ लेकर के चले। जब देखा जा रथ पर चलने से नहीं पकड़ा में आ रहा है, तब भीम रथ से कूद करके एकदम पैदल दौड़े, मैंने रथ से भी अधिक दौड़ने वाले, और अर्जुन ने किया ऐसा बाण मारा उसके आगे एकदम आग सी लगी। चाहते तो ब्रह्मांड से खत्म कर सकते थे, किंतु दोनों की मरने की संभावना, फिर उसको पकड़ लिए, पकड़ करके ले आए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी जो आदेश है इसका सिर काट लें, किंतु द्रौपदी ने मना किया, नहीं नहीं ये आपकी बहन का पति है, आपकी बहन रोएगी, विधवा हो जाएगी, छोड़ छोड़ कैसा बदमाश। ऐसे ही कितने का हुआ, ये तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जिनके स्वामी इतने बलवान थे उनके लिए लिखा महाभारत, ऐसा कितना कोटि कोटि लोगों के साथ में ऐसा ही हो रहा होगा। नरकासुर ने उसी समय में क्या किया, देश भर की जितनी सुंदरी लड़कियां स्त्रियां थी सबको जीत करके जबरदस्ती पकड़ कर लेकर राजाओं को, जरासंध ने कितने हजार राजाओं को, युवक राजाओं को पकड़ करके अपने जेल खाने में बिना कारण बंदी कर दिया, उनका ये देते थे बलि देते थे, ऐसा ऐसा सबक। कंस का ने कैसा अत्याचार किया, तो यही वो लोग करते थे, परपीड़न, दूसरों का राष्ट्र लूट लेना, लड़कियों स्त्रियों को पकड़ करके जबरदस्ती ले जाना, उनका सर्वस्व लूट लेना, ये सब उनके जीवन का व्रत हो गया था। कोई किसी को मानता नहीं था। भारतवर्ष में कितने राज्य हो गए थे उस समय टुकड़े टुकड़े, इसका कोई हद नहीं। सारी पृथ्वी भगवत भक्ति से गंध से रहित होकर के भार सा बन गया था पृथ्वी के लिए। पृथ्वी हिमालय सुमेरु पर्वतों का भार सह लेती है, इसके लिए बहुत आनंद उसको होता है। भार उनको कहाँ होता है, जब धर्म के विरोधी लोग पृथ्वी पर उत्पन्न होकर के पृथ्वी पर अत्याचार करने लगते हैं उसको वो नहीं सह सकते, उसी से उसका भार बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि मैं रसातल को चली जाऊंगी। यहां पर जो मूर्ख लोग हैं जो कि तत्व को नहीं जानते वो कहेंगे ये पृथ्वी गो रूप धारण करके ब्रह्मा के पास में जा करके बोल, पानी ने कहा, आकाश ने कहा, ये विंध्याचल पर्वत बढ़ रहे थे खूब बहुत जल्दी जल्दी, अब अगस्त ऋषि गए उनको प्रणाम किया, उन्होंने कहा जे ऐसे ही रहो, तब से ऐसे हैं। तो विंध्याचल जी रास्ता रोक रहे थे इनको जाने नहीं देने से, इस तरह विंध्याचल जी का कहना। विशेष करके हिमाचल की पुत्री पार्वती, ये कैसे हुआ, इतना बड़ा भारी पर्वत और उसकी कन्या, पर्वत की कन्या हो गई उमा जी, एक लड़की बड़ी सुंदरी हो गई, और ये नाग जो था काली उसकी पत्नियां भगवान से कह रही हैं बड़ी सुंदरी हैं, ये सब कैसे हुआ। सूर्य जी कह रहे हैं उनकी संतान हुई, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, और मरीचि के पुत्र कश्यप, और कश्यप के पुत्र हैं सूर्य, और सूर्य की पुत्री और कन्या जम और जमी, हुआ ना। तो ये सूर्य से भी पुत्र और कन्या होते हैं, उनकी भी स्त्री है, देखो तो कैसे ये झूठ बातें गप की बातें शास्त्र में लिखी गई। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्र, और चंद्र से ये चंद्र वंश, और सूर्य से सूर्य वंश। कभी यह होता है चंद्र का लड़का हो तो अब लड़का क्यों नहीं होता है, ऐसी डपोर गल्प बातें ये शास्त्रों में भरी पड़ी है। और भी बहुत ऐसे ही बातें ये आज कल के नास्तिक लोग इन कथाओं पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं विश्वास करेंगे, वो आत्मा नहीं मानते हैं, ये शरीर केवल मानते हैं, वो देखते हैं इसे जो बोली निकलती है ये शरीर बोल रहा है, इसके अंदर से आत्मा बोल रही है, इसको विश्वास करते हैं, ये विश्वास नहीं करते। इसलिए उस आदमी ने कहा ये तो मान लेंगे, किंतु पेड़ ने कहा ये नहीं मानेंगे, पेड़ में आत्मा नहीं होती तो पेड़ बातचीत नहीं करेगा। पृथ्वी में भी आत्मा है, हमारे शरीर का अधिष्ठात्री ये जीव है, जीवात्मा, वैसे पेड़ों में भी उसका अधिष्ठात्री, एक एक पेड़ में एक एक जीव है,
उसी तरह से पृथ्वी का भी एक अधिष्ठात्री देव, सूर्य का, चंद्र का, ये सब है। गाय में भी, गाय मैंने क्या, उसका ऊपर का चमड़ा मांस ना क्या, उसमें भी आत्मा है। गाय की आत्मा को निकाल लो और दूध दुहो तो ये दूध कहां से आता है, कहां से आया? इस पर मूर्ख लोग विचार नहीं करते, आजकल का समाज इसको नहीं मानता। इसलिए पृथ्वी ब्रह्मा के निकट में गई और शरणापन्न हुई, इस बात को लोग नहीं मानते, और वो बोलेगी ब्रह्मा जी से, ये भी संभव नहीं दिखता। किंतु वेदों में ऐसा बतलाया गया, एक बार इंद्रियों में प्राण के साथ में झगड़ा हुआ, इंद्रियों ने कहा, हाथ पैर नाक कान इत्यादि ने कहा, भाई अब हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा होती है ये प्राण लेता है और हम लोगों को कोई पूछता नहीं, जो खाना जाता है यही खाते हैं महाशय, इसलिए हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, हड़ताल कर दिया उन्होंने, हड़ताल कर दिया। तो फिर थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ, अब तो हाथ पैर चले नहीं, इंद्रियों का काम भी धीरे धीरे बंद हो गया, जब जिसमें निकलेगा प्राण उसमें सब छटपट छटपट कर, कहते हैं कि ये रूपक है, रूपक नहीं, बात ये ठीक है, शास्त्र में सभी चीजें ठीक कही गई है। वृक्ष ने कहा वृक्ष से, पक्षी ने कहा किसी से, महाराज युधिष्ठिर पक्षी भी की बोली जानते थे, लिखा है एक दिन अपने इंद्रप्रस्थ में या अपने हस्तिनापुर में अपने ऊपर में सोए थे, छत पर सोए हुए थे, उसमें मैं रात में कुछ पक्षी जा रहे थे, रात को आप लोग देखते होंगे चिक 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 सफेद दलों का ऐसा करते हुए चले जाते हैं और थोड़े थोड़े रूप में बोलते जाते हैं, कुंग कांग बोलते हैं, अंधेरी रात में भी वो दिख पड़ेंगे। तो वो जा रहे थे और कह रहा था, उसमें एक कह रहा था दूसरे से, भाई महाराज युधिष्ठिर बड़े दानी और बड़े, आज तक पृथ्वी में ऐसा कोई यज्ञ नहीं किया, अपना सर्वस्व उन्होंने दे दिया, ऐसा यज्ञ तो देखा नहीं। दूसरा कहा बकवास मत कर, तू जानता ही नहीं है, युधिष्ठिर महाराज जी तो कोई यज्ञ नहीं कर किया, ये तो दरिद्र व्यक्ति हैं, मंगनी मांग करके किया। अरे यज्ञ करने वाला हमने देखा प्रयाग में, एक वृक्ष के नीचे, एक गाड़ी के नीचे रहता है एक साधु, और वो छिलोन श्वास वृत्ति से, अर्थात जब पौधे कट जाते हैं गेहूं इत्यादि के, चना के, मसूर के, तो वो जा करके उनको बीनता है, बीन करके साफ करता है, भड़बूजे से भुजवा कर फिर उसको अपने हाथ से सत्तू बनाता है, और सत्तू से पशु पक्षी कीट पतंग सबको वो देता है, सबको संतुष्ट करने के बाद में थोड़ा सा अपने जीवन के लिए थोड़ा सा, हाँ यज्ञ है तो ये सुन करके युधिष्ठिर महाराज जी बोले भीम से और अर्जुन से, जरा पता लगाओ तो ये वो कौन है जो हमसे भी बड़ा भारी यज्ञ किया। तो वो केवल हंस से यही कहा, इनसे वो श्रेष्ठ है, किंतु कैसे श्रेष्ठ है ये पता नहीं। कृष्ण से उन्होंने सगरे जग करके कहा अर्जुन और भीम को तो भेजो, वो गए वहां पर देखा, वहां से लौट करके आए और बताए एक गरीब ऋषि है, गाड़ी के नीचे रहते हैं, अपना घर नहीं है, कुछ भी अपना कहने लायक नहीं, वहीं पर रह करके भगवत स्मरण करते हैं, गाड़ी के नीचे रहते हैं और दाने बीन करके लाते हैं खेतों से कटे जाने के बाद में, और उसी का सत्तू बना करके सब प्राणी पत सबको दे करके अपने जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा सा करते हैं। ये सब कृष्ण की इच्छा से हुआ, क्यों किया, इनको अभिमान हो गया था
पांडवों को, हम लोग बड़े भारी यज्ञ करने वाले। ये यज्ञ कहाँ से हुआ? हिमालय में गए, कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया, और वहाँ से पहले के जो यज्ञ करने वाले थे उनका अवशेष जो रह गया था, पात्र सोने का और ये सब चीज़ें, वो पृथ्वी में कहीं दबी हुई थी। कृष्ण के कहने से जा करके उसको निकाल करके ले आ करके यज्ञ किया, और जगत के लोगों में उनका नाम हुआ कि ये यज्ञ कर। किंतु यथार्थ में उनका अपना, उनसे वो ब्राह्मण का श्रेष्ठ। ये किस लिए बतला रहा था? पशुओं की, पक्षी की भाषा इत्यादि, उनके अंदर में आत्मा है। जहां आत्मा है वो जरूर बोलती है। पृथ्वी के भी आत्मा है। यमुना नदी, यमुना का कहा गया यमुना कृष्ण की बड़ी प्यारी है, उन्हीं की अधिष्ठात्री देवता विशाखा जी, उन्हीं को कालिंदी भी कहा जाता है, यमुना भी कहा जाता है। ऐसा सब कहा गया है। मृदम अब्रवीत, मट्टी ने कहा, वृक्ष उबाच, वृक्ष ने बातचीत की। ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, इसका यही सब तात्पर्य है। विशेष करके जगत जननी दुर्गा हिमालय की लड़की हैं, तो पर्वत को पत्थर से लड़की कैसे उत्पन्न हो गई, ये कैसे हो गया? विंध्याचल को, विंध्याचल जी दंडवत प्रणाम किया अगस्त ऋषि को, और विंध्याचल की भी दो लड़कियां थी, चंद्रावली और राधिका जी, ये कैसे संभव है? विंध्यवासिनी इनके पुत्र को, हिमालय के पास में रहने वाले कोई पर्वत के पुत्र गोवर्धन है, द्रोण के पुत्र ये गोवर्धन, ये तो एक तरह से पर्वत का पत्र माना जा सकता है। किंतु पर्वत भी बढ़ते हैं, घटते हैं। हमने आज से 50 वर्ष पहले जहाँ पर हम लोग गुरुजी रहते थे, पहाड़ सब हैं, देखा जाए छोटा सा एक पर्वत, 5 वर्ष के बाद में देखा जाए इधर, अभी यदि जाएँ तो देखेंगे इसे कितना बड़ा हो गया, और पुराने पर्वत टूट टूट करके खंड बिखंड हो रहे हैं, उनमें भी जीवन मरण है, कुछ मरे हुए हैं कुछ जीवित हैं। आज का मनुष्य ये सब चीजें नहीं मानता। इसलिए ब्रह्मा जी के पास में गो गई, गो माता, और उनके शरणापन्न हुई, ये शास्त्र विरुद्ध नहीं, ये ठीक है। गोरभूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना पृथ्वी के लिए बतलाया गया। पृथ्वी जी गोरूप धारण करके गई। अब ये देखना है कि ये पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं इनका रूप क्या है। परीक्षित महाराज जी जब कहीं जा रहे थे तो देखा एक सांड और एक गाय, सांड भी एक पैर पर खड़ा और गाय बड़ी दुबली पतली, बड़ी दुखी और रो रही थी, और सांड भी रो रहा है। तो यहाँ पर भी देखा है पृथ्वी जी को गोरू, और जिसमें पृथ्वी महाराज जी थे, पृथ्वी उबड़ खाबड़ ऊंची नीची, उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया गाय के रूप में। और इस प्रसंग में भी जब ब्रह्मा जी को अपना दुखड़ा रोने जा रहे थे तो भी गोरूप में गई। क्यों गोरूप में? इनका गोरूप ही है। दूसरी बात, और तो किसी ने नहीं कहा, सनातन गोस्वामी ने या जीव गोस्वामी ने बतलाया, गुरुपेति कृपा विशेष जजनार्थम, ब्रह्मा जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए गाय बन करके गई। गाय बड़ी सीधी होती है, बड़ी उपकारी होती है, इसके एक एक रो में मिला करके करोड़ों करोड़ों देवता लोग इसमें वास करते हैं, किसी का अनिष्ट नहीं खाती, घास खा करके और अपना दूध देती है, लोगों के लिए दूध देती है, ऐसा उपकारी जानवरों में कोई भी नहीं है, इसलिए इसको हिंदुओं ने माता माना या सनातन धर्मी वालों ने। मुसलमान लोग इसको, इसका दूध खाते तो हैं और भी दूसरे देश वाले, किंतु उसका मांस भी खाते, माँ नहीं मानते। जिसका दूध पिया जाता है वो तो माँ होती है। हजार चेष्टा करने पर गोवध बंद ही नहीं हो रहा, इसलिए उसके पाप से ये देश को ये भोगना पड़ रहा है। अब वो गो रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गई। कितना बजा बतला देना,
8 मिनट
बाद। जाकर के पृथ्वी ने कुछ कहा होगा ब्रह्मा जी से, ये नहीं बतलाया। इसमें केवल यही बतलाया, गोर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना रुदंती करुणम विभो, विभो माने ब्रह्मा के पास में गई और वहां जाकर के अपने दुख को रोया। कहा क्या कहा होगा, विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है कुछ दो चार श्लोक इसके संबंध में। जब ब्रह्मा जी को क्या बोली, उन्होंने कहा तत्साम्प्रतमेव दैत्या कालनेमी पुरोद्यमा मर्तलोकम समागम्य बाधन्ते अहर्निशम प्रजा। कालनेमी नेमिर हतो जो असौ विष्णुना प्रभ विष्णुना, पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास में जाकर के बोली। अभी कालनेमी जो विष्णु के द्वारा मारा गया था, कालनेमी कौन है, अभी तो कंस, उस समय में हिरण्याक्ष का पुत्र, उसके बहुत से बड़े पुत्र थे, बहुत पुत्र थे, जिसमें कालनेमी भी एक था। कालनेमी को भगवान ने मारा और उस समय का व्यक्ति आत्मा अब इस समय में आ रही है, इसके बीच में कहाँ रही, जहाँ कहीं भी घूम रही होगी, कितने कितने जन्म लिए होगी,